नमस्कार, एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, लगातार हमारी चर्चा हो रही है किस प्रकार व्यसन या मादक द्रव्य समाज में अंधकार पैदा कर रहे हैं और हमारे भविष्य को, देश के भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। खास करके युवा पीढ़ी इससे प्रभावित है और दिनों दिन युवाओं में मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ता ही चला जा रहा है। युवा वर्ग जो किसी भी राष्ट्र की भावी पीढ़ी है, किसी भी राष्ट्र की नींव है, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा है, यदि युवा वर्ग ही इससे ग्रस्त हो जाए तो भविष्य तो अंधकारमय होगा ही होगा, देश का, समाज का और उनका स्वयं भी। इसीलिए इस विषय को बहुत विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ आदरणीय सूर्य भाई जी बने हुए हैं इस पर समाधान और प्रकाश डालने के लिए कि कैसे युवा वर्ग इस व्यसन रूपी राक्षस से मुक्त हो सकता है और एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ सकता है। हमारे पास ढेरों ढेर आपके प्रश्न आ रहे हैं ईमेल के द्वारा, अन्य प्रकार से भी। तो जो मेल्स आज हमारे पास आए हैं उन्हें हम आज के कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन आइए उससे पूर्व हम स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। प्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है।
शुक्रिया
प्राता जी। बहुत सुंदर लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं हमें, उनके मेल्स प्राप्त हो रहे हैं, कई प्रकार के उनके मन में प्रश्न भी हैं। एप्रिसिएशन के भी हमारे पास ईमेल्स आ रहे हैं और कई प्रश्न भी आ रहे हैं कि कैसे वो इससे मुक्त हो सकते हैं। तो आज भी हम कुछ प्रश्न प्राता जी लेने जा रहे हैं। उनमें से पहला प्रश्न प्राता जी है एमबीए स्टूडेंट का और ये पुणे से हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं गुटखा बहुत खाता हूं, जानता हूं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छोड़ना भी चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं, कृपया मार्गदर्शन दें। प्रताप जी, ये गुटखा जो है, गुटखा कल्चर पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। एक प्रकार से हमारे कल्चर में इतनी श्रेष्ठता थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जहां कहीं भी हम जाते हैं तो युवाओं में इसका बड़ा क्रेज है। जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनके साथ साथ बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं तक गुटखा ने अपना घर कर रखा है। तो मुझे लगता है कि केवल अरुण त्यागी जी का ये प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत सारे युवाओं का ये प्रश्न होगा कि कैसे गुटखा की लत से मुक्त हों।
सचमुच ये समस्या भी बहुत ही ज्वलंत है और इसका समाधान होना ही चाहिए
जी,
क्योंकि हर दुकान पे आराम से गुटखा मिलता है,
हर जगह रहता है जी,
और ज्यादा पैसा भी शायद खर्च नहीं करना।
मैं समझता हूँ 50 पैसे से लेके 5 रुपए तक में ये आसानी से प्राप्त हो जाता है,
लेकिन जितना सस्ता है उतना ही ये जीवन को सस्ता बना देगा।
बिल्कुल,
जीवन तो बड़ा मूल्यवान है और अरुण त्यागी तो एमबीए का स्टूडेंट है, उसे कहीं ना कहीं मैनेजर बनना होगा। तो अगर उसके सभी कार्यकर्ता गुटखा खाने लगे, थूकने लगे तो उसे कैसा लगेगा, उसे जरा विचार करना है
जी।
तो देखिए, ये सभी नशीली चीजें तत्काल तो मनुष्य को थोड़ा सा सुख प्रदान करती हैं, लेकिन एक लंबे काल में ये अनेक रोगों को जन्म देने वाली और अनेक और आदतों को आकर्षित करने वाली बन जाती है। एक बुरी आदत दूसरी बुरी आदत को आकर्षित करती है,
जैसे कोई एक अच्छी आदत अन्य अच्छी आदतों को
फिर उसके साथी बनेंगे
जी।
साथी बनने से उसके विचार जो हैं वो दूषित होंगे और इससे संसार को बहुत बड़ा नुकसान होता है, इससे व्यक्तिगत रूप से भी मनुष्य को बहुत बड़ा नुकसान होता है
जी।
तो एक तो दवाई की बात हम कर ही रहे हैं कि हमारे यहाँ गुटके को छुड़ाने की भी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, तो मैं अरुण से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेवा केंद्र पर जाएं और अपने अंदर छुपे हुए देवत्व के बारे में थोड़े अवेयर हो जाएं, थोड़ी सी फीलिंग हो कि हम कितने महान हैं, हम एक महान देश के वासी भी हैं, हम स्वयं भी बहुत महान हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, ये भारत एक ऐसा तीर्थ स्थान है जो स्वयं भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि है, यहाँ वो स्वयं आते हैं, संसार में ऐसा और कोई लैंड नहीं जहाँ भगवान आते हों, भगवान को किसी को खोजना भी हो तो वो भारत में आता है
जी।
तो ऐसे देश के हम वासी अपनी महानताओं को पहचान कर स्वयं को महान बनाएंगे, और एमबीए का स्टूडेंट तो बहुत मैच्योर, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान होगा ही, क्योंकि
बात
तक
यही
जो
समझ
है,
में नहीं आती हाँ। दाता जी कि इतने समझदार, इतने बुद्धिमान होते हुए भी किस प्रकार से एक छोटी सी चीज के अधीन कैसे हो जाए।
बस यही कि कहीं भी कॉलेजों में इसके बारे में जरा भी अवेयरनेस नहीं है,
और संभवतः हमारे पाठ्यक्रम में भी बचपन से ये चीज शामिल नहीं
शामिल
है,
नहीं है।
जिसके कारण इससे होने वाले नुकसान, इसके दुष्प्रभाव का कोई ज्ञान ही
साथ
नहीं है।
में उन जो पढ़ाने वाले वो भी कहीं ना कहीं इसके अधीन रहते हैं,
जी
तो
जी
उन्हें कहीं से ऐसा आदर्श भी दिखाई नहीं देता जिन जिनको वो देखते हैं
जी
कि भाई ये चीजें बुरी हैं। तो
बिल्कुल
एक तो मैं कह रहा था कि वो सेवा केंद्र पर जाएं, बहनों से कांटेक्ट करें और इसकी दवाई का प्रबंध करें।
जी
दूसरा राजयोग, जो बहुत सुंदर चीज है जिसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं और बार बार करेंगे। राजयोग एक ऐसी विद्या है जो संसार की सबसे गुह्यतम विद्या है, जो बहुत छोटी सी भी है लेकिन इसका विस्तार इतना लंबा चौड़ा है कि मनुष्य जीवन भर इसको सीखता रहता है और अभ्यास करता रहता है। इसके नए नए अनुभव मनुष्य को होते रहते हैं, इससे मानसिक शक्तियों का उत्थान होता है, बौद्धिक जो मनुष्य की क्षमताएं हैं उनमें बहुत अधिक वृद्धि होती है। हमारे ब्रेन से अनेक निगेटिव चीजें डिलीट हो जाती हैं, अनेक पॉजिटिव चीजें उसमें आ जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन की धारा, उसके चिंतन की धारा, उसका व्यवहार, सब कुछ इससे बदलने लगता है। तो एक एक नई राह पर कदम बढ़ते हैं और इससे बहुत अच्छा होता है। तो अरुण को मैं कहूंगा कि वो राजयोग का जरूर अभ्यास करे और ये गुटखा आदि सभी कैंसर आदि को और अनेक रोगों को जन्म देने वाले हैं ही, और भविष्य में इनसे बहुत नुकसान होते हैं। मुझे MBA के ही कई स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जो नौकरियों की तलाश में है और नौकरियां मिलने में देर हो रही है। मैं यहां सभी MBA स्टूडेंट्स को या और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, चाहे इंजीनियरिंग कर लिया हो और एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं, मैं उन सबको स्पिरिचुअलिटी का एक सूक्ष्म सिद्धांत बताना चाहता हूं। ये सिद्धांत भी है और मेरे पास इसके हजार अनुभव भी हैं कि अगर मनोस्थिति श्रेष्ठ है, अगर मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, तो उसे नौकरी तत्काल मिलती है, पढ़ते पढ़ते ही मिल जाती है।
राता जी, आजकल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा लाभदायक होंगी, प्लस पॉइंट होंगी युवाओं के लिए।
बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट तो अच्छे इंटरव्यू में बैठाए ही जाते हैं कि वे उनकी पर्सनैलिटी का निरीक्षण करें, क्योंकि एक व्यक्ति के नंबर बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट हो सकता है पर मान लो बड़ा क्रोधी है और उसके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं और सब उसके क्रोध से परेशान हैं, तो वो कंपनी या फैक्ट्री तो नष्ट होने लगेगी।
इसीलिए भ्राता जी आज के दौर में ये कहा जाता है कि पहले लोगों का IQ देख करके लोगों को जॉब दिया जाता था, लेकिन अब उनका EQ देख कर, अर्थात इमोशनली वो किस प्रकार से, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कितने
EQ देखने के साथ साथ SQ भी देखना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी देखनी चाहिए, मॉरलिटी भी देखनी चाहिए। क्योंकि एक सफल मैनेजर या जिस भी पोस्ट पर वो आगे बढ़ जाए, उसमें उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है वो कितना सौम्य है, वो कितना सुंदर व्यवहारी है, वो अपने कार्यकर्ताओं के दिलों पर कितना राज कर रहा है, वो अधिकार से, डांट डपट से उन्हें बुरा बोल बोल कर काम करा रहा है, शाउटिंग कर रहा है, ये एक सफल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहलाया जाता। इसमें मैनेजमेंट को बहुत कष्ट हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि जिनकी मनोस्थिति अच्छी है उनको इंटरव्यूज में सफलता बहुत जल्दी मिलती है, नौकरियां बहुत जल्दी मिलती हैं। इसलिए मैं अरुण जैसे अनेक MBA करने वालों को यहां से कहना चाहूंगा कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका ग्रेड कौन सा आता है, आपके मार्क्स कितने आते हैं, आपकी डिवीजन कौन सी आती है, इसके साथ साथ आपकी मनोस्थिति कितनी सुंदर है उसकी छाप दूसरों पर पड़ेगी। तो अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए अभी से आप अपने जीवन को इन छोटी बुराइयों से मुक्त करें, और आपके अंदर शक्ति है इनसे मुक्त होने की, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति MBA कर रहा है, जिसको एक जिम्मेदार पोस्ट पर आगे चल के काम करना है, उसे अपनी इनर पावर्स को भी पहचानना होगा कि तुम्हारे पास शक्ति है और तुम चाहो तो तत्काल एक संकल्प से, दृढ़ता से इसको छोड़ सकते।
और स्पिरिचुअलिटी भ्राता जी इसमें बहुत ज्यादा मदद करती है कि कैसे वो इन बुराइयों से मुक्त भी हो, अपने आप को पहचाने और साथ ही अपनी क्षमताओं को विकसित करे।
ठीक
है भ्राता जी, ये दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है यूपी से राज सिंह जी हैं ये, और ये कहते हैं, सर हमारे गांव में सभी युवा वृद्ध नशे के आदि हैं, इसलिए गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। उन्हें इस बात का बोध ही नहीं है कि नशा उनका सर्वनाश कर रहा है। क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे सभी मादक पदार्थों का उत्पादन, आयात निर्यात, क्रय विक्रय बंद हो जाए? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।
बिल्कुल, बांस भी न रहे, बांसुरी भी न रहे, शराब ही न रहे तो
जी
प्रसाद पीने वाले भी न रहे।
बहुत अच्छी बात तो वैसे बिल्कुल सही है,
बहुत अच्छी राज सिंह जी की बात, बहुत ही सुंदर है। ऐसे एक गांव नहीं, बहुत गांव हैं। ऐसा दो अच्छे गांव से तो मेरा भी रिश्ता हुआ। एक तो हमारे यहाँ आबू के पास ही एक गांव है, मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसी जाति वहां रहती है जहाँ सभी लोग पूरी तरह पियक्कड़, रात को लड़ाई झगड़ा मारपीट,
पूरा का पूरा गांव।
वहां का जो एक नेताजी था वो एक बार हमारे यहाँ अबू रोड में आया था और वो बस में बैठ के जा रहा था, पी बहुत ली थी, उसका हाल हो गया था बहुत खराब, तो बस वालों ने उसको हमारे यहाँ उतार दिया। हमारा हॉस्पिटल है कोने पर ही, उसको वहां भर्ती कराया गया। उसकी वहां 3 दिन तक बहुत अच्छी सेवा शुश्रूषा हुई और वो ठीक हुआ। अब उसको फील हुआ कि ये श्राप तो सचमुच जीवन के लिए श्राप है। श्राप क्या? श्राप है, श्राप हो गया ये। तो उसने हमारे भाई बहनों को अपने गांव में ले जाकर ये अच्छे प्रोग्राम कराए और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात थी कि उसके गांव में नशा मुक्ति का बहुत सुंदर अभियान चला, बहुत लोगों ने राजयोग सीखा और बहुत फायदा हुआ। वो व्यक्ति जो ब्रह्म कुमारियों को सदा ही एक दूसरी नजर से देखता था, अब वो प्रशंसा करने लगा सदा, क्योंकि उसका अपना जीवन बच गया। उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, अगर अगर हमारे हॉस्पिटल में उसको न लाया जाता, कोई उसका शुभचिंतक बस में न बैठा होता और उसको ऐसे ही और ले जाते एक आध घंटा, तो उसकी मृत्यु हो ही जाती। तो ये बहुत अच्छी बात है राज सिंह भाई की, कि अभी खेती को कैसे बंद किया जाए, जिन किसानों कि आजीविका का साधन ही ये है, उनको कोई कहे कि आज से तंबाकू की खेती नहीं करनी है। यहाँ राजस्थान में तो बहुत सारा है, कहीं स्मैक और क्या क्या नाम है, हमें तो नाम भी नहीं आते, वो सब यहाँ खेती हो रही है, उस पर प्रतिबंध लगाना तो शायद किसी के लिए भी अब संभव नहीं है, लेकिन हम अपने पे प्रतिबंध रख सकते हैं। मैं तो कहूंगा राज सिंह भाई को कि आपके नजदीक जो भी सेवा केंद्र है वहां की बहनों को आप निमंत्रण दें, अपनी ओर से 2-4 लोग मिलकर वहां बहुत अच्छे प्रोग्राम कराए जाएं, और जहां हमारी प्रदर्शनी लगती है निश्चित रूप से वो इतना सुंदर प्रोग्राम होता है कि सारे गांव के नर नारी और बच्चे उसको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। हम तो बहुत जगह जाते हैं, हजारों जगह हमने देखा है, तो वहां एक सुंदर चीज की शुरुआत हो जाएगी, बहुत लोग उससे जुड़ेंगे और इस अभियान को अगर आपके गांव में आगे बढ़ाया जाएगा तो आपका गांव सचमुच एक समृद्ध गांव, एक गोकुल गांव, एक ऐसा आदर्श गांव भी बन सकेगा जिसमें इस नशे का नाम निशान नहीं होगा और जहां सभी लोग सुख चैन से सोएंगे, सुख चैन से जगेंगे, माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और इस तरह विकास होगा।
तो विचार ये उनका अच्छा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन जब तक हम ऊपर के लेवल में पहुंचे उससे पहले हम अपने लेवल पे कार्य करें, एक आदर्श प्रस्तुत करके दिखाएं लोगों को कि ऐसा किया जा सकता है। और जब लोग एक आदर्श व्यक्ति को देखेंगे, एक आदर्श गांव को देखेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे भी उससे प्रेरणा लेंगे और धीरे धीरे ये जो बांस और बांसुरी वाली बात उनकी है ये स्वप्न भी साकार हो जाएगा।
बिल्कुल, हमें तो हमारे सामने तो क्लियर विजन है कि ऐसा समय जल्दी आएगा जब ये सारा संसार ही इस नशे से मुक्त हो जाएगा। हम तो उज्जवल भविष्य का विजन देख रहे हैं और न केवल देख रहे हैं, न केवल हमारे वो ड्रीम्स हैं, लेकिन हम तो अपने ड्रीम्स को फुलफिल होता हुआ भी देख रहे हैं। हमारे स्वप्न साकार होंगे और राज सिंह जी का स्वप्न भी साकार होगा, लेकिन वो इसकी शुरुआत अपने से करें, अपने परिवार से करें।
जी भ्राता जी, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। अंधकार इसलिए लोगों को दिखाई देता है, संभवतः ये आंकड़े अंधकार के कारण बन रहे हैं। भारत में लगभग 35 करोड़ लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं,
मतलब
35 करोड़,
1/3 पॉपुलेशन ऑफ
लगभग। और जब इस प्रकार के लोग को अपने चारों तरफ देखते हैं तो प्रकाश या फिर उम्मीद लोगों की जो है वो जैसे बुझ जाती है, लगता है कि शायद अब देश का, समाज का कुछ नहीं होगा। और भ्राता जी, अगला आंकड़ा ये है कि लगभग 5,500 युवा प्रतिदिन नशा करना सीख रहे हैं, 5,500
सबसे बुरी चीज ये है
जी जी जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें, और प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए नशीले पदार्थों में खर्च हो रहे हैं।
देखिए ये भी एक बहुत इतना पैसा अगर भारत की सड़कों को सुधारने में लगा दिया जाए, गांव-गांव की सड़कें टूट जाती हैं, एजुकेशन पे खर्च कर दिया जाए, गरीबों के लिए निःशुल्क दवाइयां देने में खर्च कर दिया जाए, तो कितने लोगों का भला होगा। एक ही चीज से डबल नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य का भी, चरित्र का भी, धन का भी, और इधर कई फायदे हो जाएंगे।
बिल्कुल, और जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ब्रता जी की केवल स्वास्थ्य नहीं लेकिन समाज में जितनी भी प्रकार की विकृतियां फैल रही हैं उनका कहीं ना कहीं बीज ये नशीले द्रव्य ही हैं। और एक और चौंकाने वाली बात है ब्रता जी, विडंबना ही कहेंगे कि लगभग 80% ऐसे लोग मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं जो कानून बनाने वाले हैं, और 90% ऐसे लोग इसका सेवन कर रहे हैं जो कानून के रखवाले हैं, और लगभग 40% अध्यापक वर्ग भी इससे ग्रस्त।
बड़ी प्रशंसनीय बात है, अध्यापक ही जब शराब पी के क्लास में पहुंचता है और सिगरेट पीना तो वहां आम बात है, तो निश्चित रूप से गुरुजनों का सत्कार बहुत कम हो जाता है।
इसीलिए भ्राता जी शायद अंधकार दिखाई दे रहा है एक आम व्यक्ति को, और जिस प्रकाश की बात, जिस नए युग की बात और जिस रोशनी की बात आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि कहीं ये स्वप्न दिखाने वाली बात तो नहीं हो रही है।
यही देखिए, अगर 35 करोड़ लोग इन व्यसनों के अधीन हैं तो बचे हुए 75 से भी ज्यादा करोड़ लोग, मैं समझता हूँ 80-85 करोड़ लोग इनसे मुक्त भी तो हैं भारत में
जी।
तो ये संख्या उससे 2.5 गुनी हो गई, तो निश्चित रूप से प्रकाश तो है, लेकिन आंकड़े तो बुराइयों के ही आते हैं, और मनुष्य सोचता है कि बस बुराई बुराई है, अच्छाई तो कहीं है ही नहीं। लेकिन हम तो देख रहे हैं, जैसे हमारे आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं जहां हम रहते हैं, वहां हमें कभी सिगरेट का धुआं भी नहीं देखने को मिलता है, वहां शराब की बात तो बहुत दूर, उसके आसपास भी कोई गुटखा खाता नजर नहीं आता है। तो भले ही एक सुंदर शुरुआत छोटे स्केल से ही क्यों ना हो, पर है तो वो सुंदर ही, और किसी भी बड़ी से बड़ी चीज का भी पहले तो एक बीज ही डाला जाता है ना, बीज तो छोटा सा ही होता है, शायद बीज को देखकर कोई ये भी कह सकता है कि ये बीज, ओहो सुंदर लीची आएंगी क्या, लीची कब मिलेंगे, भला ये छोटा सा बीज दाना, इससे क्या होने वाला,
मतलब शुरुआत करने की आवश्यकता है। जब एक व्यक्ति चल पड़ता है तो कारवां ऑटोमेटिक बनता ही चला जाता है।
तो आशा की किरणें हम सबके सामने हैं, और एक मनुष्य को आशावादी तो होना ही चाहिए जीवन के हर फील्ड में, ये नेचर ही बहुत सुंदर नेचर है। अगर किसी भी फील्ड में मनुष्य निराश हो जाता है तो उसकी बाधाएं और अधिक प्रबल हो जाती हैं। तो बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है, ये भगवान का कार्य इस सृष्टि को स्वच्छ करने का, देव लोक बनाने का यहाँ पर पुनः चल रहा है, और वो सफल हो रहा है। भगवान का काम को कौन रोक सकता है।
और वैसे भी कहा जाता है व्रता जी की अच्छाई में ज्यादा ताकत होती है, शक्ति होती है बनिस्पत बुराई।
बिल्कुल, एक छोटी सी अगरबत्ती लंबी चौड़ी बदबू को नष्ट करने में सक्षम होती है ना, तो हम अगरबत्ती हैं, एक भी अगरबत्ती बनेगा तो 100 लोगों की बदबू समाप्त हो।
बिल्कुल बिल्कुल राता जी, अगला प्रश्न हमारे पास दिल्ली से आया है। राजीव शुक्ल जी लिख रहे हैं, संसार में जो भी चीजें भगवान ने बनाई हैं वो मनुष्य के भोग के लिए ही बनाई हैं। फिर ये कहना कि ये खाओ ये ना खाओ, ये पियो ये ना पियो, ये कहना क्या ईश्वर का और उसकी रचना का अपमान करना नहीं है? यदि कुछ ना खाना व पीना होता तो भगवान ने वो बनाया ही क्यों होता?
बड़ा बुद्धिमान लगता है, बड़ा ही राजेश जी है क्या?
राजीव शुक्ल दिल्ली से, बड़ा ही तार्किक प्रश्न है इनका आपके लिए।
और ऐसे बुद्धिमान लोगों को तो, लोगों पर तो संसार को गर्व करना पड़ेगा। तो जहर भी तो बना हुआ है संसार में, क्यों ना सब उसी का सेवन करने लगे, कितना अच्छा रहे। देखिए ये मनुष्य की अपनी अपनी सोच है, संसार में बहुत सारी चीजें हैं और सभी चीजें सबके लिए नहीं होती हैं
जी।
मोटा सा तर्क है, सभी चीजें सबके लिए नहीं हैं। लोहा लुहार के लिए है, सुनार के लिए नहीं। अगर सुनार भी लोहे की चीजें लाकर अपनी छोटी हथौड़ियों से ठुक ठुक करने लगे तो उसका सब कुछ टूट जाएगा। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, तर्क दिए जा सकते हैं। मनुष्य के लिए खाने की अलग चीज है, जानवरों के लिए खाने के लिए घास है, और कई चीजें उपलब्ध हैं। मनुष्य भी सोचे घास भी तो प्रकृति की देन है, जब जानवर खा रहे हम क्यों ना खाएं। जानवर बहुत चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं, किसी चीज के आगे आप मांस का टुकड़ा डालो वो जानवर रिजेक्ट कर देंगे, मुंह बना के दूसरी ओर निकल जाएंगे। सब कुछ जो इस संसार में उत्पन्न है वो केवल मनुष्य के उपभोग के लिए नहीं है, ये सोचना भी कि सब कुछ भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया है और उसका उपयोग न करना, मनुष्य का वो भगवान की रचना का अपमान करना है, तिरस्कार करना है, गलत तर्क है, कुतर्क इसको कहा जाएगा। वास्तव में तो ये भगवान का सम्मान है कि हम उसकी जो रचना है उसका भक्षण न करें। मांस खाना भक्षण करना है ना, अपने पेट को भी मूर्धघाट बना देना है ना, सारा माल उसी में भरते रहते हैं। मैंने देखा था एक जगह एक बकरे की बलि चढ़ने वाली थी, एक मंदिर था देवी का, हमें बहुत अच्छी बातें बताई गई कि यहाँ लोगों ने कमेटी ने बलि बंद कर दी थी, किसी को भी स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन एक नेता जी आए फिर उन्होंने फिर से चालू करा दिया कि देवी नाराज हो गई है। मैंने देखा, पहली बार देखा ऐसा, एक बकरा बंधा हुआ था बलि के लिए, बकरा कांप रहा था, उसको किसी ने बताया नहीं तुम्हारी बलि चढ़ेगी, लेकिन उसको उस जगह पर बांध दिया था जहां बलि देने वाले बकरों को बांधा जा, सब देख रहे थे कि इस बकरे की मनोस्थिति देखो जी। तो इसके अंदर जो भय के जर्म्स पैदा हो रहे हैं, संस्कार बन रहे हैं खाने वालों में, क्या वो नहीं जाएंगे?
बिल्कुल।
तो ये ऐसी चीज है कि अगर भगवान की रचना है तो उसका तो ये अपमान हो रहा है ना, भक्षण हो रहा है ना, उसका कत्लेआम किया जा रहा है ना, तो ये तर्क बिल्कुल गलत है। भगवान ने हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई,
फल बनाई हैं, सब्जियां बनाई हैं, अन्न बनाए, जैसे हम देखते हैं कि कौन सी चीज मेरे शरीर को सूट करता है, कौन सी चीज नहीं कर रहा है, तो हम ये भी तो देखते हैं जो चीजें हमारे शरीर को जैसे लग रहा है कि ये चीजें खानी चाहिए, हम वही चीजें खाते हैं, नहीं खाने वाली चीजें होती हैं हम उनको छोड़ ही देते हैं। विवेक का भी हम यहाँ पे प्रयोग,
विवेक के प्रयोग के बिना तो अगर हम सब कुछ खाएंगे तो अगले दिन बेड पर हॉस्पिटल में चले जाएंगे। एक डायबिटीज का पेशेंट है, क्या वो सोच सकता है कि रसगुल्ले सारे तो मेरे लिए ही बने हैं? फिर तो उसको हॉस्पिटल में रसगुल्ले उसको खाएंगे फिर तो।
बिल्कुल बिल्कुल। राता जी, एक अंतिम प्रश्न है, ये कहते हैं, मुझे अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का बहुत टेंशन रहा, अच्छे मार्क्स न आने के कारण परिवार व स्कूल में लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, इस अपमान के कारण मैं बहुत डिस्टर्ब रहा करता था और मैंने शराब पीनी शुरू कर दी, अब मैं इस आदत से परेशान हूं और मैं क्या करूं? ये हैं धवल जी, अमरेली।
तो धवल जी, ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जीवन से। नींद के लिए, परेशानी को समाप्त करने के लिए आपने शराब का सेवन करना प्रारंभ कर दिया, पर कहावत और सत्यता तो यह है कि चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। आपने इसमें थोड़ा सा बदली कर दिया, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो रम, राम की जगह आपने रम कर दिया, तो इसका तो नुकसान आपको बहुत होगा, जैसा आप महसूस कर रहे हैं कि इससे तो आपकी अध्ययन करने की क्षमता, मेमोरी पावर सब छीन होती जाएगी, और जब आप से शराब का नशा उतरेगा उसके भी घंटों तक आपको नशा नींद के नशे की तरह चढ़ा रहेगा। इसलिए ये तो आपने अपने को श्रापित कर लिया, अब राजयोग के मार्ग पर आ जाइए, और जैसे मैंने कहा होम्योपैथी दवाइयां हमारे पास हैं, उनका आप सेवन कीजिए तो इस लत से आप मुक्त हो जाओ और आपका भविष्य भी थोड़ा सुंदर हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने हमारे सभी दर्शकों के बहुत सुंदर जो प्रश्न थे, तार्किक प्रश्न भी थे, उनके मन के अंदर छुपे हुए प्रश्न थे, उन सबका आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया। निश्चित रूप से सभी लाभान्वित हुए हैं, इसका लाभ लेंगे राजयोग का अभ्यास करके, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, जैसा भ्राता जी ने अंत में कहा कि एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, लेकिन आज शायद हमने राम को रम कर दिया है, ये सोचकर कि शायद रम पीने से या फिर मादक द्रव्यों का सेवन करने से हमारे सारे गम तकलीफें दूर हो जाएंगी, लेकिन ये केवल भ्रम है। जैसे हम नशे से बाहर आते हैं, अपने को टूटा फूटा हुआ महसूस करते हैं, दुख अशांति हमें घेर लेती है और हमारा भविष्य भी पूरी तरह अंधकारमय बनता चला जाता है। इसलिए अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को इस नशे की लत से मुक्त करने की जिम्मेवारी उठाएं। जब मैं बदलूंगा तो निश्चित रूप से समाज बदलेगा, देश बदलेगा, मेरा भविष्य जब श्रेष्ठ होगा तो निश्चित रूप से समाज और देश का भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। तो हमारे युवा साथी बहुत बुद्धिमान है, जैसा हम बार बार कहते आ रहे हैं, अब हमें यह निर्णय करना है कि हमें नशे से मुक्त जीवन जीना है या नशे से युक्त जीवन। आप सबका निर्णय बिल्कुल ही सार्थक और सकारात्मक होगा, ऐसी हमें पूरी पूरी उम्मीद है। आज समाधान में केवल इतना ही। दीजिए अपने मित्र रूपेश को इजाजत। नमस्कार।